ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। पिछले 2-3 दिनों से आप सभी इस ज्ञान सरोवर परिसर में रहकर यहाँ की गतिविधियों को देखकर इस महासम्मेलन में भाग लेकर इतने सारे वक्ताओं से उनके व्याख्यान सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे आप कहाँ आए हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये विश्वविद्यालय तो है ही लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो दुनिया में एक अनूठा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की विशेषता है कि यहाँ महिलाएं बहनें इसका संचालन करती है। लेकिन इनके संस्थापक कौन है ये भी आप जानना चाहेंगे, और कब स्थापन हुआ ये संस्थान और आज कहाँ तक पहुँचा है और किसने स्थापन किया, वो सारी बातें मैं आपको चित्रों के माध्यम से दिखाना भी चाहूँगी और सुनाना भी चाहूँगी। अगर हम कहें कि जहाँ आप आए हैं ये विश्वविद्यालय के साथ साथ एक ईश्वरीय परिवार भी है, और परिवार के साथ साथ ये एक यज्ञ भी है। यज्ञ कब रचा जाता है? जब कोई आपत आती है। तो अगर हम कहें कि इस समय दुनिया में बहुत बड़ी आपत आई हुई है तो ये गलत नहीं होगा, और भगवान ने आकर उसके लिए यज्ञ रचा है इस आपत से दूर होने लिए। क्या आपत आई है? घोर कलयुग, जहां चारों ओर तमो प्रधानता का वार है, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, सब प्रकार के बुरे आचरण सिवाय सदाचार के। तो ऐसे समय पर परमात्मा की आवश्यकता है, क्योंकि वो ही इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं। तो परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए, और जिसको निमित्त बनाया उसका नाम रखा पिता श्री ब्रह्मा। उनकी जीवन कहानी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जो एक अद्भुत जीवन कहानी है, जिनकी जीवन कहानी को सुनकर अनेकों का जीवन बदल गया। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और कैसे एक साधारण मनुष्य से प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए? थे तो हमारी तरह ही, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए, अर्थात सारी सृष्टि का पिता ब्रह्मा को रचयिता मानते हैं। तो ये नाम उनको स्वयं परमात्मा ने दिया कि अब तुमको नई सृष्टि की रचना करनी है। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपना तन मन धन सब स्वाहा किया माताओं बहनों के आगे, और एक बीज रोपा, और वो बीज आज वट वृक्ष की तरह सारे विश्व में 140 देशों में इनकी शाखाओं के रूप में उभरा है। और हमारी जैसी हजारों बहनें इसमें अपना जीवन समर्पित कर चुकी है और आप जैसे लाखों परिवार नियमित विद्यार्थी बन करके यह ईश्वरीय ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। तो कौन थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा? इनका पूर्व नाम था दादा लेखराज और लखीराज बाबू के नाम से आप हैदराबाद सिंध में, जो उस समय भारत का हिस्सा था और बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, हैदराबाद सिंध के रहवासी थे और बहुत बड़ी उनकी बिजनेस थी, हीरे जवाहरातों के जेवर बनाते थे और उनके ग्राहक उस समय के भारत के राजाएं महाराजाएं थे और अंग्रेज थे जो भारत पर राज्य करते थे। तो इनका घर तो हैदराबाद सिंध में था लेकिन इनकी बहुत बड़ी शोरूम थी हीरे जवाहरातों के जेवरों की, वो कलकत्ता में थी और बाबा आया जाया करते थे। बहुत धनी भी थे लेकिन जितने ही धनी थे उतने ही बड़े दानी भी थे, उतने ही बड़े भक्त भी थे। धनी तो थे ही इसलिए उनका नाम समाज में बहुत था और लखीराज बाबू ये कह करके समाज उनको बुलाता था। बहुत सुखी परिवार था। 1876 में उनका जन्म हुआ था। 5 बच्चे थे, 3 बेटियां, 2 बेटे और लगभग सबकी शादी भी हो चुकी थी, उनके पोतरे दोतरे भी थे और 60 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। समाज में उनका नाम तो बहुत था, जो भी उनके द्वार पर आता था वो कभी भी हाथ खाली नहीं जाता था, क्योंकि अक्सर करके वो ही आते थे जिनको कुछ उनसे चाहिए होता था, तो दान दक्षिणा बहुत करते थे, संत महात्माओं को अपने घर में बुलाते थे और सत्संग रखवाते थे, गीता के बहुत नेमी थे, रोज सवेरे नहा धोकर बिना मुंह जूठा किए गीता का पाठ घर में करते थे और सारा परिवार वो गीता का पाठ उनसे सुनता था। तो भक्ति भावना भी बहुत थी, कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहां बाबा दर्शन करने न गए हो, अमरनाथ की भी यात्रा की थी। तो जीवन में कोई कमी नहीं थी लेकिन क्या कमी थी? सत्य को जानने की कमी। सत्य क्या है? हम कौन है? ईश्वर कौन है? हम इस संसार में क्यों आए हैं? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें जाना कहाँ है? भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? इस प्रकार के कई आध्यात्मिक प्रश्न उनके मन में आते थे और अक्सर करके शास्त्रों में उसको खोजते थे उनका उत्तर, और कई गुरुओं के पास जाते थे उनका उत्तर जानने के लिए, लेकिन कहीं भी उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो इसी खोज में भक्ति भी बहुत करते थे। विष्णु की अटूट भक्ति थी, इतने नियमित थे विष्णु की भक्ति में, जो उनका फोटो सदा उनके पॉकेट में रहता था। तो भक्ति में कोई कमी नहीं थी भगवान के प्रति श्रद्धा भावना में कोई कमी नहीं थी, दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं थी, परिवार का सुख साधन सब कुछ था, लेकिन उस खोज के कारण अवश्य वो ईश्वर को कहते थे, हे भगवान मुझे सत्य को जानना है। तो कैसे अचानक, एक दिन की बात है, जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी, 1936 में जब उनकी आयु 60 वर्ष की थी, तो उनको अचानक विष्णु की वो भक्ति कर रहे थे कि अचानक उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, उनके इष्ट का उनको दर्शन हुआ। लेकिन ये दर्शन बहुत विचित्र था, क्योंकि जब भी किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो उस इष्ट से उनको एक वरदान मिलता है, और वो वरदान क्या होता है, तथास्तु, माना आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि वो भक्ति इसीलिए करते, इच्छा होती है कुछ पाने की। तो भगवान से उनको वरदान मिलता है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तथास्तु। लेकिन बाबा को कोई इच्छा नहीं थी संसार की, केवल सत्य को जानने की इच्छा थी। तो जब उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, तो चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म धारी विष्णु उनके सामने उपस्थित हुए, तो उनको क्या वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, ये वरदान उनको मिला, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। अब ये जो साक्षात्कार बाबा ने किया, उसमें उसको बहुत खुशी तो हुई, क्योंकि विष्णु के कई रूप उनके सामने आए, कई मंदिर है विष्णु के भारत में, तो भिन्न भिन्न मंदिरों के जो विष्णु के स्वरूप थे वो उनके सामने आते गए आते गए, और हर स्वरूप ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और जब वो ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा और ही मूझ गए, क्योंकि ये इतना बड़ा वरदान उनको मिला कि तुम मेरे जैसे हो, अब ये तो बहुत बड़ा वरदान था। तो उनके मन में प्रश्न उठा, मैं इन जैसे कैसे हूं, क्योंकि उनकी भक्ति करते थे, विष्णु का ध्यान करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, तो मैं इन जैसा कैसे हूं, मैं तो इनका दास हूं, सेवक हूं, भक्त हूं, इनकी पूजा करता हूं, तो मैं इन जैसा नहीं हूं, हे भगवान ये कैसा मुझे वरदान दिया कि मैं आप जैसा हूं, इसका अर्थ बताइए। अब उसका अर्थ कौन बताए, तो जो उस समय उनके तत्कालीन गुरु थे, उस गुरु के पास गए कि इसका मतलब क्या है, मुझे ये कैसे वरदान मिल गया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, इसका मतलब बताइए। अब गुरु को भी जितनी समझ थी उस अनुसार गुरु ने उनको अपना विचार दिया कि हो सकता है भगवान को आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य करवाना है, तो आपको उसके लिए उनको निमित्त बनाना है, इसीलिए आपको ये वरदान दिया कि आप मेरे जैसे हो। तो बाबा को आया, मुझे कौन सा कार्य करना है, जो भगवान मुझे आदेश देंगे मैं वो कार्य करने लिए तैयार हूँ, पर क्या करना ये भी तो मुझे मालूम हो। तो गुरु ने उनको राय दी कि आप उसके लिए एकांतवास में चले जाओ, हो सकता है आपको कुछ और अनुभव हो उस एकांतवास में, ये धंधे से थोड़ा समय निकाल करके एकांतवास में आप और ध्यान करें विष्णु का, अपने भक्त, अपने इष्ट का। तो बाबा ने सोचा, मैं अपने घर में या दुकान पर तो ये सब नहीं कर सकता हूँ, परिवार बहुत बड़ा था, तो मैं इसके लिए एकांतवास करने लिए बनारस जाता हूँ। तो बाबा हैदराबाद से बनारस चले गए, जहाँ उनके मित्र रहते थे, और वहाँ एक दिन बनारस में संध्या काल के समय विष्णु का ध्यान करते समय उनको बड़े विचित्र साक्षात्कार हुए, और सबसे विचित्र साक्षात्कार हुआ जो उनको इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि तीन रूप से दुनिया का विनाश हो रहा है, एक अणु युद्ध के रूप में, दूसरा ग्रह युद्ध के रूप में, और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में। और बाबा ने देखा कि सारा संसार नष्ट हो गया एकदम, प्रलय से भी बदतर वो स्थिति हो गई, सब कुछ खत्म। तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, सब दुनिया ऐसे खत्म होने वाली है, फिर हे भगवान ये दुनिया तुमने बनाई क्यों अगर खत्म ही होनी है सारी दुनिया, और फिर मुझे क्या करना है वो भी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गुरु ने कहा भगवान आपसे कुछ बड़ा कार्य करवाएंगे, तो क्या कार्य कराएंगे भगवान, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है, क्योंकि ऐसा उनको साक्षात्कार हुआ। तो कुछ समझ में नहीं आया, अब साक्षात्कार तो हुआ लेकिन बाबा को केवल उतना ही नहीं हुआ, साथ में उनको परम धाम का साक्षात्कार हुआ, एक अखंड ज्योति का महतत्व उन्होंने देखा, सुनहरा लाल प्रकाश का एक पूरा तत्व, जैसे आकाश तत्व है वैसे वो सुनहरे लाल प्रकाश का एक तत्व था, जो ब्रह्म महतत्व जिसको हम कहते हैं, उस अखंड ज्योति के महतत्व में एक उल्टा झाड़ देखा, जो सितारों का झाड़ था वो वास्तव में आत्माओं का झाड़ था, और वो उल्टा था, उसका बीज ऊपर था परमात्मा, और उसकी रचना सारी नीचे एक झाड़ के रूप में। और फिर बाबा ने उसके साथ क्या साक्षात्कार किया कि वो जो सितारे हैं वो धीरे 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 उस सितारों के पेड़ से नीचे आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, और नीचे उतरते उतरते धरती पर पहुंच रहे हैं, और जैसे ही वो धरती पर सितारे पहुंचे वो एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया। और देखा पापा ने कैसे चारों ओर देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं, और ये संसार एकदम बदल गया, कहां उसने बिल्कुल प्रलय का स्वरूप देखा, सब कुछ नष्ट हुआ देखा, और कहां प्रकृति का चरम सौंदर्य वो बाबा ने देखा साक्षात्कार में। और इतना ही नहीं, उसमें देखा कि एक सोने का महल जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और एक सुंदर सा सोने का सिंहासन जिस सिंहासन पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण विराजमान थे, और दोनों कैसे उस सिंहासन से उठे और बाहर आए महल से, और जैसे ही बगीचे में पहुंचे फव्वारे चलने लगे, चारों ओर सुगंध फैल गई, संगीत बजने लगा, और देवी देवताएं रास करने लगे, मानो इतना सुखद अनुभव जो बाबा ने पहले कभी नहीं किया था वो अनुभव बाबा ने किया। पर बाबा तो देखते ही रह गए इतनी सुंदर दुनिया। और फिर बाबा को अचानक एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी क्या सुनाई दी? आकाशवाणी क्या सुनाई दी कि लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आने वाली है, और ये दुनिया तुमको बनानी है, ये काम भगवान ने उनको दिया, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। अब इतना बड़ा कार्य भगवान को दिया, तो जब वो वापस अपने स्थिति में आए तो उनको समझ में नहीं आया, और ही उलझन हो गई कि भगवान इतना बड़ा कार्य आपने दिया है इस संसार को बदलने का, मैं कैसे इस संसार को बदलूंगा, उसके लिए फिर क्या करना होगा वो भी तो मुझे मालूम हो। तो और ही मुझ गए, बहुत कुछ साक्षात्कार किए लेकिन आखिर करना क्या है ये तो उनको समझ में नहीं आया। इतना समझ में आ गया कि ये दुनिया ऐसी स्वर्गीय दुनिया तुमको बनानी है, इतना ही, अब कैसे बनानी है ये पता नहीं। फिर तो बाबा को इतना वैराग्य आ गया, इस दुनिया से वैराग आ गया, और बाबा ने सोचा बस अब मैं अपनी बिजनेस वाइंड अप कर दूं, क्योंकि भगवान को मुझसे बहुत कुछ कार्य करवाना है। तो बाबा वहीं से, बनारस से बाबा कलकत्ता चले गए, जहां बाबा का दुकान था, वो शोरूम था, और वहां अपने पार्टनर को ये सब बताया कि कैसे मैंने विनाश का साक्षात्कार किया, फिर एक नई दुनिया का साक्षात्कार किया। और जब दुकान में आए तो वो जो हीरे जवाहरातों से जड़े हुए इतने सुंदर गहने थे, वो तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। सारी दृष्टि बदल गई, पूरी वृत्ति बदल गई, इसकी सोच बदल गई, सारा जैसे एकदम परिवर्तन आ गया। और बाबा ने उस अपने भागीदार को कहा कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान को मुझसे एक बहुत बड़ा कार्य करवाना है, इसके लिए मैं ये धंधा खत्म कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, और जितना मेरा हिस्सा है मैं लेकर आप पार्टनर को दुकान दे दी। तो मानो बिल्कुल अब बिजनेस से आप न्यारे हो गए, और वहाँ कलकत्ता से बाबा अपने घर लौट आए, हैदराबाद सिंध। लेकिन जब वो वापस आए तो बाबा एकदम बदले हुए थे, वैसे तो धोती कुर्ता पहनते थे, वैसे भी पहनते थे, बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन बाबा एकदम जैसे वैरागी बन गए, सबसे न्यारे होने लगे, बिल्कुल जैसे खोए खोए से। और कैसे, बस भगवान से यही उनकी प्रार्थना थी, भगवान मुझे क्या करना है मुझे आदेश दीजिए, मैं तैयार हूँ। तो सब बिजनेस तो खत्म कर दी, अब परिवार इनका था तो वो भी हैरान हो गए कि ये बाबा को क्या हो गया है, इतना कैसे बदल गया है, और आगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं। तो बाबा एकांत में रहने लगे, एकदम घर वालों से दूर अपने कमरे में बस तपस्या में लगे रहे। तो एक दिन की बात है कि बाबा को ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा एक अखंड ज्योति का महतत्व, और उस महतत्व में एक बहुत सुंदर प्रकाशित सितारा, इतना प्रकाशित था पर उतना ही शीतल था, तेज जो था जैसे हजारों चंद्रमाओं की रोशनी जितना, इतना प्यारा सुखद वो सितारा था। और धीरे धीरे बाबा ने देखा कि वो सितारा वो धीरे धीरे उनके निकट आया, और निकट आते 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 उनके अंदर प्रवेश हो गया, मानो शिव परमात्मा का अवतरण उनके तन में हुआ। और बाबा की आंखें तो बंद थी, अंदर ही अंदर वो सुखद अनुभव बाबा करने लगे। और उसी समय वो ध्यान में ही थे और उनके मुख से आकाशवाणी हुई, उनके मुख से एक अलग ही आवाज, बाबा की आवाज नहीं थी पर एक अलग ही आवाज, बहुत गहरी आवाज, और वो शब्द क्या निकले उनके मुख से, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। शिव परमात्मा ने उनके मुख द्वारा अपना परिचय दिया कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। शिव परमात्मा ने अपनी पहचान उनके मुख से दी। अब उनके घर वालों ने ये सब सुना तो जब बाबा वापस ट्रांस वो साक्षात्कार या ध्यान से नीचे उतरे तो जब आंखें खोली तो एकदम लाल लाल आंखें थी, जैसे लाइट का बल्ब जल रहा उनकी आंखों में और ललाट एकदम चमक रहा था, सारा जैसे आभा मंडल उनका चारों ओर अनुभव हो रहा था। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? क्योंकि ये जो मुख से शिव ने अपना परिचय दिया ये बाबा को तो कुछ पता नहीं, वो तो ध्यान में थे। तो जब बाबा से पूछा कि आपने क्या अनुभव किया तो बाबा ने दो टूक शब्द कहे, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी और वो शक्ति वो प्रकाश मेरे अंदर समा गया, बाकी मुझे कुछ पता नहीं, बस इतना ही बाबा ने कहा और आंखें बंद कर दी। बस उसके बाद चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार हुए? सबसे पहला चमत्कार हुआ कि बाबा बुजुर्ग 60 वर्ष से की आयु वाले वो खड़े थे और कैसे धीरे धीरे वो रूप सफेद धोती कुर्ता वाला बदल कर वहां श्री कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजाता हुआ, पीताम्बरी धारी और कैसे मोर मुकुटधारी रूप, बहुत मोहिनी रूप वो खड़े हैं। और जो भी बाबा को देखता था उनको बाबा से ये साक्षात्कार होने लगा, एक क्रांति हो गई। बाबा ओम की ध्वनि करते थे तो बाबा से श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। अब ये इतनी बड़ी न्यूज बन गई कि हैदराबाद सिंध में एक व्यक्ति है जिसका जो जिसको नाम दादा लेखराज है, उसको जो देखता है उसको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं उनमें से। अब ये चारों ओर न्यूज फैल गई, 1936 की ये बात है। इतनी न्यूज फैल गई जो इंटरनेशनल न्यूज बन गई। टाइम मैगजीन जो अमेरिका से प्रकाशित होती है वो इंटरनेशनल मैगजीन है टाइम, उस मैगजीन तक वो न्यूज आई और लोग दूर दूर से हैदराबाद सिंध तथा भारत का ये हिस्सा था वहाँ आते थे बाबा का दर्शन करने के लिए, कौन व्यक्ति है जिनको देखने से श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनसे और अधिक घर बैठे भी लोगों को होने लगे श्री कृष्ण का साक्षात्कार। और फिर श्री कृष्ण उनको कहता है मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। तो ब्रह्मा बाबा का वो चेहरा वो ध्यान में देखते थे। तो ये जैसे श्री कृष्ण उनको कह रहा है कि मेरे से मिलने के लिए इस व्यक्ति के पास जाओ, मैं तुमको वहां मिलूंगा। अब सब तो इनको जानते नहीं थे लेकिन ढूंढ ढूंढ करके कैसे बाबा के पास पहुंचते थे। तो एक ये क्रांति हो गई, बिग रेवोल्यूशन साक्षात्कारों की। और दूसरी क्रांति ये हुई कि वो जो साक्षात्कार लोगों को होते थे वो अक्सर करके महिलाओं को होते थे, माताओं बहनों को कुमारियों को होते थे, पुरुषों को नहीं होते थे बहनों को माताओं को होते थे। अब कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगी। ये राधे है जो हमारी मम्मा बनी, अलौकिक माँ बनी, ये उस समय 16-17 साल की थी। ये इनकी जो पिताजी थे वो गुजर गए थे, वो भी बिजनेस करते थे, लेकिन उनको बिजनेस में घाटा पड़ गया और एकदम हार्ट फेल हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो इनकी जो माँ थी वो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। इनका भाई भी गुजर गया, बाप भी गुजर गया, तो माँ तो जैसे इतनी दुखी होने लगी। तो लेकिन ये जो बच्ची थी ये स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन बहुत टैलेंटेड थी, कई कलाएं थी उनके अंदर, सुंदर भी थी, गीत कला, संगीत कला, नृत्य कला, सब प्रकार की कलाएं थी, अवार्ड्स लेती थी अपने स्कूल में। तो अपनी माँ की वो स्थिति देखकर उनको बड़ा रहम आता था, क्योंकि बहुत रोती थी, काले कपड़े पहनकर एकदम बाल खुला रख कर के छाती पीटना, रोना, न जाने क्या क्या। तो माँ तो जैसे पागल जैसी हो गई। तो किसने उनको कहा कि अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ, वहाँ उनको श्री कृष्ण का दर्शन होगा उनसे, तो उनको शांति मिलेगी। अब जैसे ही अपनी माँ को बाबा के पास ले गई, तो इनकी माँ को बाबा से श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और एकदम उनको जैसे चिपक गई, क्योंकि श्री कृष्ण को देखा और उनकी भक्ति करती थी, बहुत भक्ति करती थी, उनको दर्शन हो गए श्री कृष्ण के। और जो रोती रोती आई और दर्शन जैसे किया श्री कृष्ण का, वो हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, इतना हंसने लगी कि एक वो भी न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, मानो एक एक न्यूज बन गई अखबार में। अब ये भी एक चमत्कार था। अब माँ बेटी दो ही थी बस, उनका न पति था न पिता, माना न भाई था, और एकदम देवाला निकाला था उसके फादर ने, तो घर भी नहीं था, मामा के घर में रहे। तो बाबा को ये पता था इनका कि वो भी ज्वेलरी का काम करते थे और उनको सारा देवाला निकला, तो बाबा ने माँ बेटी को अपने पास रख लिया, मानो ये अलौकिक जीवन उनको मिल गया। और फिर दूसरा एग्जाम्पल है दादी प्रकाशमणि जी, जो इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका बनी 38 सालों के बाद, 38 सालों तक ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद। आप भी उस समय 14-15 साल की थी, आप भी स्कूल पढ़ती थी, तो इनको सवेरे सवेरे अपने घर में श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, बहुत भक्ति करती थी, गीता का बहुत अध्ययन करती थी, तो इनको सवेरे सवेरे ये साक्षात्कार हुआ। और श्री कृष्ण के पास जैसे जाने की कोशिश की तो वो दूर होता गया, और आगे ब्रह्मा बाबा खड़े सफेद वेश में, और वो दूर से कहता है कि मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, मेरे से मिलना है, पहले इनके पास जाओ। अब बाबा को तो वो जानती नहीं थी, लेकिन उनको बड़ा अनुभव हुआ कि ये व्यक्ति आखिर है कौन, और इनके पास जाने से श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। लेकिन उस समय न्यूज तो हैदराबाद सिर में फैल चुकी थी। तो शाम को वो स्कूल में जब गई दिन में, तो सब लड़कियों ने एक प्लान किया कि कल हम सब वहाँ जाएंगे दादा लेखराज के पास, और हम सबको कृष्ण के दर्शन होंगे। इसने कहा मैं अपनी माँ से पूछूं, अपने पिता से पूछूं। तो इनके जो पिता थे वो ज्योतिषी थे, और इनका जो इनकी जन्म पत्री में उसने देखा कि ये कृष्ण की बहुत भक्ति करेगी और मीराबाई की तरह अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी, मानो इतनी पवित्र उनकी उनका जीवन होगा। तो अपने पिता से पूछने से पहले ही पिता ने इनको कहा कि बेटी यहाँ दादा लेखराज रहते हैं, उनके पास कोई शक्ति है क्या है, उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम जाके देख के आओ, पिता ने इनको कहा। तो अगले दिन अपनी सहेलियों के साथ वो बाबा के पास गई, और जैसे सत्संग में बैठी बाबा को देखा और ध्यान में चली गई, और श्री कृष्ण का उसने दर्शन किया। बहुत देर तक बैठी रही, सब उठ के चले गए, सत्संग पूरा भी हो गया, लेकिन वो वहीं बैठी थी। तो बाबा ने देखा कि ये सत्संग पूरा हुआ फिर भी बैठी है, तो बाबा ने उनको बुलाया। जब ध्यान से उतरी तो बाबा इनके पिता को जानते थे, क्योंकि हैदराबाद से छोटा सा शहर था, सब एक दो को जानते थे, बिजनेसमैन तो सब जानते थे। तो इनसे पूछा कि, क्योंकि ये गीता बहुत पढ़ती थी, तो बाबा ने उस समय एक स्कूल खोला हुआ था, लड़कियों का स्कूल, जिसमें बाबा चाहते थे इन लड़कियों को वो स्थूल जो विद्या है संसार की वो तो मिले, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी मिले। तो एक टीचर की जरूरत थी जो आध्यात्मिक शिक्षा उनको दे सके, गीता सुना सके। और दादी प्रकाशमणि वो तो गीता पढ़ती थी, तो उनको कहा कि आप अपना जीवन भगवान को अर्पित करो और स्कूल में आप पढ़ाओ, तो नौकरी के हिसाब से नहीं लेकिन जीवन समर्पित करने के हिसाब से। तो इसके पिता से पूछा तो पिता ने कहा बेटी तुम्हारा तो जीवन ही उनको अर्पित है। तो चिट्ठी लिख के दी कि मैं अपनी बेटी को ऐसे श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूँ। मानो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने, उसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जिन बहनों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया ईश्वर अर्थ, और एक अलौकिक परिवार बन गया। छोटे छोटे भी थे और बड़े भी थे, कन्याएं भी थी, परिवार के परिवार भी थे, बहुत थे। अब उस समय शिव परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के द्वारा यह आदेश दिया सबको कि अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है, यह आदेश मिला। तो सब ने प्रतिज्ञा की, छोटे बड़ों ने, ब्रह्मा बाबा ने खुद भी की कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। और बाबा ने अपनी चल अचल सारी प्रॉपर्टी 8 बहनों के नाम पर कर दी, विल कर दी प्रॉपर्टी, और अपना जीवन पवित्र योगी बनाया। अब जब ये न्यूज़ फैली तो कुछ लोगों ने विरोध किया, क्योंकि उनकी बेटियां थी, बच्चियां थी उनकी, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, और इन्होंने तो एक वचन ही ले लिया कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। तो विरोध तो बहुत हुआ। फिर तो जो ये जो बालिक थी, माना 18 साल से ऊपर थी, उन्होंने तो कहा हम अपना जीवन का फैसला खुद करेंगे। पर जो छोटी थी उनके तो माता पिता का अधिकार था, तो मानो वो परिवार तो था ही, लेकिन फिर जो फ्री हो गई उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और बाबा हैदराबाद सिंध से कराची चले गए। ये 1937 की बात है, एक साल तक इस प्रकार से चला। और 1937 में कराची में आपने, आप सब गए, लगभग 385 भाई बहने थे, परिवार के परिवार भी थे। और वो कराची में रह करके सागर के किनारे जा कर के तपस्या करते थे। कराची सागर के किनारे पर है, जैसे मुंबई में बीच है ना, जुहू बीच और चौपाटी वगैरह, वैसे क्लिफ्टन बीच है कराची में, वो सुंदर है। तो वहाँ वो सवेरे सवेरे जा कर के सागर के सामने तपस्या करती थी और एक्सरसाइज करती थी। यंग थी, सब यंग ही थी, और वो एक्सरसाइज भी करती थी, शर्ट और शॉर्ट्स पहन करके, और तपस्या भी साथ साथ करती थी। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने भी तपस्या की। मम्मा तो वो छोटी थी, वो तो 18 साल की थी, और बाबा तो 60 वर्ष से थे, बड़े थे। तो परमात्मा ने इनको नाम दिया पिताश्री ब्रह्मा, और मम्मा को नाम दिया जगदम्बा सरस्वती। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, ये अलौकिक रूप से मात पिता बन करके सारे अलौकिक परिवार की उन्होंने पालना की, और साथ में तपस्या भी की। और 14 साल 1937 to 1950, ये 14 साल कराची में रह करके उन्होंने तपस्या की। और इन्हीं 14 वर्षों में दुनिया में परिवर्तन आ गया। एक परिवर्तन आया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों, हजारों भी नहीं, लाखों। और वो विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया, एटम बॉम्ब गिराया, और जापान ने सरेंडर किया अमेरिका को और लड़ाई खत्म हुई। जापान, जर्मनी, ये सब एक तरफ थे और लड़ाई और वो युद्ध समाप्त हुआ, पर एटम बॉम्ब गिराया। तो इन बहनों ने बाबा से पूछा, बाबा यही विनाश था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो एटम बॉम्ब का जो विनाश होता है वो साक्षात्कार में देखा था। तो शिव परमात्मा ने कहा, ये तो ट्रेलर था जो एटम बॉम्ब गिराया, पूरे शहर के शहर खत्म हो गए, ये तो ट्रेलर था, अब बताओ रियलिटी क्या होगा, ये ट्रेलर था। फिर उसी समय कैसे यूरोप का नक्शा बदल गया, लेनिन और स्टालिन आए, मानो यूएसएसआर बना और यूरोप का नक्शा पूरा बदल गया। और फिर भारत में अंग्रेजों का राज्य था और कैसे बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का 47 में 47 में, और उस समय गृह युद्ध हो गया भारत में, रक्त की नदियां बही, क्योंकि जो हिंदू थे, सिख थे, वो पाकिस्तान में चले गए, तो उनको कहा तुम लोग हिंदुस्तान जाओ, और वहाँ बहुत मार काट हुई, खून की नदियां बही, और जो आए वहाँ से हिंदुस्तान वो तो हाथ खाली, नंगे पैर, सब कुछ, अपना धन दौलत संपत्ति सब कुछ छोड़ करके भाग के आए अपनी जान बचाने लिए। तो वो भी एक दयनीय स्थिति थी। तो कैसे एक गृह युद्ध का रूप था, और ये संस्था कराची में ही तपस्या कर रही थी, इनका बाल बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि वो आते थे आतंक फैलाने वाले, पूछते थे कि आप लोग कौन से धर्म के हो, जैसे अभी पहलगाम में हुआ ना, आप कौन से धर्म के हो। अब अगर वो कहे कि हम हिंदू हैं, तो उनका कत्लेआम करते थे, मानो ऐसी स्थिति हो गई थी। कई तो कन्वर्ट होकर मुस्लिम भी बन गए, लेकिन जब इन बहनों से पूछते थे आप कौन से धर्म के हो, तो इन्होंने ये सफेद वस्त्र धारण किए हुए, बाल खुले, देवियां लगती थी, तो इन्होंने कहा हम मानव धर्म के हैं, मानव धर्म। अब मानव धर्म तो सबका है, तो मानव, और फिर इन बहनों से उनको इतनी पवित्रता के वाइब्रेशंस मिलते थे जो बाल बांका भी नहीं किया इनका। फिर तो पार्टीशन के बाद तो थोड़ी सुलह हुई, जो कुछ भी हुआ, तो ये संस्था वहीं की वहीं थी कराची में, गवर्नमेंट बन गई, और उसके बाद इनकी बहुत रक्षा हुई। तो लेकिन 1950 में जब भारत गणतंत्र बन गया, तब उस समय शिव परमात्मा ने आदेश दिया अभी भारत में जाओ, क्योंकि शांति हो गई, तो अभी भारत में जाओ और भारत विश्व के लिए लाइट हाउस बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। ये 1950 में शिव परमात्मा ने इनको कहा। तो भारत में जाओ, और कहाँ जाओ, कोई पहाड़ पर जाओ। उनको साक्षात्कार हुआ, किसी पहाड़ पर गए हैं, वहाँ तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कराची में थे, वो सागर का किनारा था, तो सागर के किनारे से आप पहाड़ पर जाओ। तो 1950 में ये भारत में आए, और उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था सिंध का, उन्होंने इनको सब कुछ ले जाने की छुट्टी दी, सब कुछ, पूरा सब, बिस्तरा बोरी सब पैक करके सारा सामान लेकर के आए भारत में। उनको एक जहाज भी दिया, उस जहाज में वो अपना सामान सब कुछ लाए, और ये माउंट आबू उन्होंने चुना, क्योंकि माउंट आबू कराची से बहुत दूर नहीं है, ये वेस्टर्न बॉर्डर है, पश्चिम का हिस्सा है भारत का, और पाकिस्तान का कराची बहुत नज़दीक है। तो ये जहाज में ओखा बंदरगाह पर आए। ये जहाज में बैठे हैं सब, करीब 385 भाई बहने थे, और ओखा बंदरगाह पर उतरे जो सौराष्ट्र में है, और वहां से बाय ट्रेन आबू रोड आए। ये ट्रेन आप देख रहे हैं 1950 की ट्रेन है। उस समय कोई शीशे वीशे नहीं होते थे, रेलिंग वेलिंग भी कुछ नहीं होती थी ट्रेन में। और ये 14 साल के बाद उन्होंने दुनिया देखी। मानो कि उनको लगा कि हम एक और संसार में आ गए हैं। तो ये आबू रोड स्टेशन पर उतरे, और उस समय स्टेशन भी बिल्कुल सिंपल सा था, और ये सब वहाँ से माउंट आबू आए। तो ये माउंट आबू जो है, जहाँ आप हैं, ये राजाओं महाराजाओं का ग्रीष्मकालीन कैपिटल था। यहाँ माउंट आबू में आपको कई पैलेसेस मिलेंगे, महल मिलेंगे, जयपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, अलवर पैलेस। ये जो ज्ञान सरोवर आप आए, इनके सामने ही अलवर पैलेस है, अलवर के महाराजा का वो महल है। तो वहाँ जोधपुर पैलेस, भरतपुर पैलेस, कई सब महल। तो इन महलों में वो गर्मी के दिनों में आते थे, अप्रैल मई जून, ये सब राजा महाराजा माउंट आबू आते थे। अंग्रेजों ने ये रोड बनाया, पहले तो पहाड़ों पर चढ़ करके आते थे। यहाँ जो दिलवाड़ा मंदिर है, वो 1000 साल पहले ये मंदिर बना, पूरा मार्बल का। उस समय रोड नहीं था, तो हाथी और घोड़ों पर मार्बल माउंट आबू लेकर आए थे और दिलवाड़ा मंदिर बना, जो आप देखने जाएंगे। तो कैसे ये आए, और भरतपुर राजा का महल इन्होंने पसंद किया। तो बाबा तो तपस्या करते थे, मम्मा भी तपस्या करती थी, और भरतपुर राजा के महल में ये रहे। और 1952 में बाबा ने इन बहनों को भारत के कोने कोने में भेजा। उनके रिश्तेदारों ने उनको निमंत्रण दिया, और वो भारत में के दिल्ली में गए, बैंगलोर गए, बॉम्बे गए, यूपी में लखनऊ गए, आदि आदि सब शहरों में निमंत्रण पर ये गए। और जो उन्होंने ज्ञान सुना, वो सब दूसरों को देते रहे, अपने रिश्तेदारों को देते रहे। और बाबा मामा तो आबू जंगल है चारों ओर, तो वहाँ वो तपस्या करने लगे। और ये मनोहर इंदिरा दादी है, जो उस समय जब आई थी तो 12 साल की थी, उसको भी बहुत साक्षात्कार हुए थे। और ये ओम की बहुत सुंदर ध्वनि करती थी, ओम, बहुत लंबा ओम की ध्वनि करती थी। तो जब ये इनको भी बाबा ने भेजा, इनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, तो बाबा ने जब इनको दिल्ली में भेजा तो अपने घर में ये ओम की ध्वनि करती थी। और जैसे ओम की ध्वनि की, तो इनसे देवी का साक्षात्कार हुआ, दुर्गा अम्बा देवी का साक्षात्कार हुआ इनसे। और सब इतने भावुक हो गए कि पहाड़ों से एक देवी आई है। तो बहुत मंदिरों में निमंत्रण मिलने लगे, और वहाँ भी जाके प्रवचन करती थी, जमुना किनारे दिल्ली में, वहाँ जाके प्रवचन करती थी। तो बहुत लोगों ने ये ज्ञान सुना, और उसके बाद कैसे वहाँ पर सेवा केंद्र खुल गया। अब इसी प्रकार से चारों ओर बाबा के सेवा केंद्र खुले। पहला केंद्र आउट ऑफ आबू से बाहर वो दिल्ली में खुला। फिर तो मम्मा भी जाने लगी, लखनऊ गए, यूपी में, कानपुर गए। मम्मा से उनको लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा भक्तों को। तो इस प्रकार बाबा के सेवा केंद्र बढ़ते गए, और दादी प्रकाशमणि अधिकतर मम्मा के साथ ही होती थी। और 1965 में कैसे मम्मा धीरे धीरे विदेही होती गई, न्यारी होती गई होती गई, और 24 जून 48 वर्ष की आयु में मम्मा ने अपना देह त्याग किया माउंट आबू में ही, पांडव भवन जो आप देखने जाएंगे या देखा होगा। और फिर दीदी मनमोहिनी जी ने प्रशासन संभाला, क्योंकि बाबा ने सब कुछ माताओं बहनों के आगे अर्पित कर दिया। तो दीदी मन मोहिनी बहुत धनी परिवार की थी। उनके रिश्तेदार जब मुंबई में आए तो मुंबई में हॉस्पिटल और कॉलेजेस खोले, तो वो भी मुंबई में है। फिर बाबा भी जाते थे, ये दिल्ली में इतने फास्ट जाती हूँ। ये परिवार के परिवार माउंट आबू आते थे, जलंधर से आए हैं, सहारनपुर से आए हैं, ये सब फैमिलीज आती थी। लेकिन सबको यही कहते थे कि परमात्मा एक है, यहाँ हर एक आत्मा आ सकती है किसी भी धर्म की हो, क्योंकि परमात्मा सबका पिता है और उस और ये जितने भी धर्म है सब एक पिता की संतान है। तो इसीलिए उस पिता को ही याद करना है। ब्रह्मा बाबा सबको पत्र भी लिखते थे, ये उनकी उर्दू में बाबा लिखते थे। तो पांडव भवन जाएंगे, वहाँ बाबा की झोपड़ी है, वहाँ बाबा बैठकर पत्र लिखते थे, मिलते थे। और चारों ओर बगीचा है, फिर ये हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा बैठकर वाणी चलाते थे। तो जो हम लोग सेवा केंद्रों पर जो वाणी सुनते हैं, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, वो बाबा यहाँ इस संगली पर बैठकर सुनाते थे। इस हॉल में अभी हमारे कार्यक्रम होते रहते, इसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास चारों ओर चित्रों में लिखा बना बताया गया है। फिर बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे, पलंग है और नीचे वो ये नीचे धरती पर तो जैसे फर्श पर वो सेती है, तो वहाँ बाबा बैठ करके बच्चों से मिलते थे। 18 जनवरी 1969 को जब बाबा की आयु 93 वर्ष की थी, तब बाबा का देहांत हुआ और अव्यक्त फरिश्ता बन गए। और उनकी याद में प्रकाश शांति स्तंभ पांडव भवन में बनाया गया, जो बाबा की समाधि है पांडव भवन में। 18 जनवरी 1969 को बाबा ने देह त्याग किया, यही अंतिम संस्कार हुए पांडव भवन में। और आज भी 18 जनवरी पर बहुत भाई बहने, हजारों भाई बहने आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन बाबा को अर्पित करते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा की याद में चार धाम है, एक शांति स्तंभ, दूसरा बाबा का हिस्ट्री हॉल, तीसरा बाबा की झोपड़ी और चौथा बाबा का कमरा। हम कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा के चार धाम है पांडव भवन में, आप जाएंगे तो देखेंगे। फिर दादी प्रकाशमणि जी मुख्य प्रशासिका बनी 69 से लेके 2007 तक। वो दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में ये संस्था बहुत आगे बढ़ी। तो दीदी जी तो थे ही मुख्य प्रशासिका, तो दादी और दीदी ये दोनों मुख्य प्रशासिका के रूप में इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाया। और विदेशों में हमारे सेवा केंद्र 1970 के बाद खुले और दोनों ने मिलकर इस कार्य को इतना सुंदर चलाया, जो हम कहते थे दो शरीर लेकिन एक आत्मा, कैसे मिलकर ये कार्य किया, इस संस्था को बढ़ाया। और फिर जो भी उस समय छोटी बहनें थी वो सब हमारी दादियां बन गई। दादी माना सिंधी भाषा में बड़ी बहन, जैसे हिंदी में दीदी कहते हैं, तो दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी जानकी, ये सब हमारी दादियां जो हमारे लिए आदर्श के रूप में थी। और 1974 में ये पहला डेलीगेशन लंदन से माउंट आबू आया, सब विदेशी है उस समय, तो ब्लैक एंड व्हाइट की फोटोज थे 74 में। और पांडव भवन के सामने ये ओम शांति भवन है, जहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है 3000 लोगों के बैठने का, और हम लोगों ने बहुत बड़ा संत सम्मेलन किया था वहाँ। तो ब्रह्मा कुमारीज और संत आए थे हरिद्वार, बनारस, ऋषिकेश, सब तरफ से। और फिर पांडव भवन से ये 4 किलोमीटर दूरी पर ये ज्ञान सरोवर है, जहाँ हमारी एकेडमी चलती है यहाँ, और अलग अलग विंग्स के कार्यक्रम होते हैं, जो आज आपका ग्राम विकास जो विंग है उसका कार्यक्रम चल रहा है, और 1.5 किलोमीटर दूरी पर अपना ग्लोबल हॉस्पिटल है यहीं पर, और 50% स्टाफ उसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, गांव-गांव में मोबाइल वैन्स ले जा कर के सेवा करते हैं मरीजों की, फ्री सेवा करते हैं। और 96 में शांतिवन, जहां माउंट आबू शुरू होता है ऊपर आने का रास्ता, वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है जहां 20,000 लोग बैठ सकते हैं और उतने ही हजार लोग रह भी सकते हैं, इतनी बिल्डिंग्स हैं। और विदाउट पिलर्स एशिया में 5th लार्जेस्ट हॉल है, जो जहां 20,000 से भी अधिक भाई बहने रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। और दादी प्रकाशमणि जी ने 85 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा, तो शांति वन में नीचे वहां उनकी याद में यह प्रकाश स्तंभ बना है, वही उनकी समाधि है। और 25 अगस्त 2007 को उन्होंने अपना देह त्याग किया। और दादी जानकी जी मुख्य प्रशासिका बने, जिन्होंने 104 साल की आयु में अपना देह त्याग किया 2020 में, अभी कुछ 5 साल पहले ही। और दादी जानकी जी ने 2020 में 104 साल की आयु में अपना देह त्याग किया। पर दादी जानकी जी बहुत सेवा करते थे, ये टीचर्स की ट्रेनिंग दादी जी कराया नीचे शांतिवन में, और 1 लाख की सभा में भी दादी जी ने बहुत भाषण किए, और विदेशों में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। दादी जानकी जी के साथ पूर्व मुख्य दादी जानकी के बाद हमारी मुख्य प्रशासिका बनी दादी हृदय मोहिनी जी, वो भी 9 साल की आयु में इस संस्था से जुड़ी और अपना जीवन समर्पित किया। इनकी विशेषता थी कि आप बहुत ट्रांस में जाती थी और शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रवेश होकर के वाणी चलाते थे, जिनको हम अव्यक्त वाणी कहते हैं। और इनके तन में बाप दादा माना शिव पिता और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके द्वारा वाणी चलाते थे। और वर्तमान और अभी जो इनके इन्होंने 2021 में देह त्याग किया, और उसके बाद दादी रतन मोहिनी जी वो मुख्य प्रशासिका बनी, वो भी 12 साल की आयु में आई थी, और 101 साल की आयु में अभी 1 महीना पहले ही आपने अपना देह त्याग किया। और इस समय वर्तमान समय हमारी मोहिनी दीदी है जो मुख्य प्रशासिका है, वो अधिकतर न्यूयॉर्क अमेरिका में रहती है और अमेरिका के कई देश संभालती है, और 6 महीना यहाँ रही और अभी वो अमेरिका में हैं, फिर आएंगे अक्टूबर में। तो इस प्रकार से हमारा ये संस्था कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रहा है, और आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप और आगे यहाँ से जब जाएंगे तो हमारे सेवा केंद्रों पर जाकर विशेष रूप से ये राजयोग मेडिटेशन अवश्य करें, और जो भी हमारे कार्य होते हैं इस संस्था द्वारा उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।